Tossir. आयत नंबर 12 से लेकर 19 तक। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है और बताया है कि लुकमान ने अपने बेटे को क्या नसीहत की, उसका हवाला दिया है। मकसद ये है कि अहले अरब जो लुकमान की हिकमत पर फख्र करते थे और उनकी रवायात में लुकमान का लिटरेचर मौजूद है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लुकमान ने भी अपने बेटे को उन्हीं बातों की नसीहत की थी जिनकी दावत ये हकीमाना किताब दे रही है। तो अजीब बात है कि तुम लुकमान को मानते हो और लुकमान जो थे उनकी हकीमाना बातें इनके लिटरेचर में भी उसका हवाला मिलता था, बल्कि जरबुल मिसल बन गई इनके पास उनकी बातें। तो जब तुम लुकमान को मानते हो कि बड़े हकीम थे, तो फिर तुम कुरान मजीद जो है इसका इनकार क्यों करते हो और कुरान की दावत इसको क्यों कबूल नहीं करते। हम देखते हैं कि लुकमान कौन थे। लुकमान की शख्सियत अरब में एक हकीम और दाना की हैसियत से बहुत मशहूर थी। ये अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हिकमत, अक्लो फहम, दीनी बसीरत में मुमताज मकाम अता किया था। एक दफा इनसे किसी ने पूछा कि तुम्हें ये फहम और शऊर किस तरह हासिल हुआ। इन्होंने बताया, सच्चाई नंबर एक, सच्चाई नंबर दो, ईमानत इख्तियार करने, नंबर तीन, बेफायदा बातों से बचने, और नंबर चार, खामोश रहने की वजह से। इनका हिकमत और दानाई पर मबनी एक वाकया बड़ा मशहूर है। ये गुलाम थे, इनके आका ने कहा कि बकरी जिबा करके इसके सबसे बेहतरीन दो हिस्से लाओ। चुनाचे उन्होंने बकरी को जिबा किया और वो जबान और दिल निकाल कर ले गए। अच्छा, फिर एक और मौका आया। अब फिर इनके आका ने कहा कि बकरी जिबा करके इसके सबसे बदतरीन हिस्से लाओ, बदतरीन दो हिस्से लाओ। अब फिर वही जबान और दिल लेकर चले गए। पूछने पर उन्होंने कहा कि जब मैंने बेहतरीन कहा था तब भी तुम जो है वो जबान और दिल लेकर आ गए, मैंने कहा कि बदतरीन लाओ तो तब भी तुम जबान और दिल लेकर आ गए। तो इन्होंने जवाब दिया कि अगर ये जबान और दिल बेहतर सही हो, ठीक हो, तो ये सबसे बेहतर है, और अगर ये बिगड़ जाए, ये खराब हो जाए, तो इनसे बदतर कोई चीज नहीं। इन्होंने ये मिसाल दी जो बड़ी खूबसूरत मिसाल है। इनके बारे में जाहिलियत के शोरा जो है इनका जिक्र करते थे, अमराउल कैस, लबीद, आशा, तरफा, ये अरबों के बड़े मशहूर शायर थे, और इनकी शायरी में जो है वो हकीम लुकमान का जिक्र मिलता है। फिर अहले अरब में बाज पढ़े लिखे थे, उनके पास सहीफा लुकमान के नाम से हकीमाना अकवाल का एक मजमुआ मौजूद था। हिजरत से 3 साल पहले मदीना का एक शख्स था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुतासिर हुआ, उसका नाम था सुवैद बिन सामित। वो हज के लिए मक्का गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सुवैद ने तकरीर सुनी, तो आपसे कहा उसने, आप जो बातें पेश कर रहे हैं ऐसी ही एक चीज मेरे पास भी है। आपने पूछा वो क्या, तो उसने कहा कि मुजल्ला लुकमान। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाइश की कि मुझे उसका कुछ हिस्सा सुनाओ, तो उसने सुनाया तो आपने फरमाया ये बहुत अच्छा कलाम है, मगर मेरे पास इससे भी बेहतर कलाम है। इसके बाद आपने उसे कुरान सुनाया और उसने एतराफ किया कि ये बिलाशुबा मुजल्लाए लुकमान से बेहतर है। अब ये कि ये जो हकीम लुकमान थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कौन थे, तो इनके बारे में पता चलता है कि ये एक हबशी गुलाम थे और कहते हैं कि मिस्र के स्याह रंग लोगों में से थे। एक राय ये है कि ये नूबा का रहने वाला था, नूबा के रहने वाले थे। बहरहाल ये जो भी थे, असल बात जिसको कुरान नुमाया करके पेश करता है वो है इनकी हिकमत, दानाई, इनकी अकलमंदी, इनकी बसीरत, इनकी समझदारी, जिसको कुरान ने खास तौर पर जो है वो नुमाया किया है। और आप जब यहाँ पे ये जो अभी हम पढ़ेंगे लुकमान हकीम के बारे में, इसमें आप ये बात याद रखें कि इन्होंने जो बातें की हैं, अल्लाह ताला इनके बारे में क्या कहते हैं कि वलकद आतैना लुकमान अल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी। हा काफ मीम, हिकमत। हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत जो है इसके एक तो मानी हकीमाना बातों के, है ना, दानाई की बातों के। दूसरे इसके मानी जो है वो मोहकम मजबूती के भी होते हैं। जैसे ये जो जानवर है ना, जानवर को अरब लोग जब लगाम देते थे ना तो लगाम से उसको कंट्रोल करते थे। अब आप देखें कि जानवर घोड़ा जो है उसको जब घुड़सवार चलाता है तो वो रस्सी उसके पास होती है ना, तो वो रस्सी को कंट्रोल करता है, घोड़े का मुंह भी उधर को हो जाता है ना। तो इसी तरह ये हिकमत जो है ये क्या है कि इंसान को कंट्रोल करने वाली चीज। और मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि हिकमत से मुराद जो है वो मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने जो है वो हदीस ली है, यानी इसके एक मानी जो है वो हदीस के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के भी किए जाते हैं। और वैसे इसके जो खास मानी है यहाँ पे वो है हिकमत और दानाई की बातें, जो बड़ी मुफीद बातें थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने लुकमान को हिकमत अता की थी, उसकी जो हिकमत दी थी। पहली चीज क्या है? अनिश्कुर लिल्लाह, कि वो अल्लाह का शुक्र गुजार हो। और हिकमत की बुनियाद आप नोट कर लें कि रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह, के हिकमत की बुनियाद जो है ये अल्लाह का खौफ है, ये है हिकमत। तो अल्लाह का खौफ क्या होता है कि जब इंसान को दीन की सूझबूझ हासिल हो जाती है, साहिबुर राय हो जाता है, अकलमंद और समझदार हो जाता है, तो हर वक्त अल्लाह से डरता रहता है, अल्लाह के जिक्र और फिक्र में लगा रहता है। और हिकमत क्या है? अनिश्कुर लिल्लाह, के अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, जाहिरी और बातनी नेमतों को याद करके अपने कौल और अमल के जरिए से अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो ये है हिकमत। अब आप देखें कि हिकमत का तकाजा है कि इंसान अल्लाह के मुकाबले में शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करे, ना कि न शुक्री का। महज जबानी जमा खर्च नहीं, बल्कि फिक्र, कौल और अमल तीनों सूरतों में शुक्र अदा किया जाए। तो फिक्र, ये जो शुक्र है इसकी किस्में क्या है? इसकी एक किस्म तो ये है कि सोचों के अंदर, फिक्र के अंदर शुक्र हो, और जब इंसान की सोच के अंदर होता है तो फिर इंसान के कौल में आता है, जबान पर भी शुक्र आता है। जबान इंसान कि अल्लाह के एहसानात का हमेशा एतराफ करती है, तो जब जबान शुक्र अदा करती है तो अमली शुक्र भी पैदा हो जाता है। और अमली शुक्र क्या होता है कि इंसान अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है, फिर अल्लाह की रजा की तलब में दौड़ धूप करता है, फिर वो अल्लाह की नाफरमानी जो है वो उससे बचता है। तो हिकमत क्या है? अनिश्कुर लिल्लाह, के अल्लाह का शुक्र गुजार बन जा, अल्लाह से खुश हो, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं। मसलन अल्लाह ताला ने आपको एक औरत बनाया है, एक लड़की बनाया है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। बाज औरतें यही ना शुक्री करती रहती हैं कि मुझे औरत या लड़की क्यों बना दिया, अल्लाह ताला ने आपको बेटियां दी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से बेटा जरूर मांगना चाहिए, नबियों ने भी मांगा, लेकिन फिर जो अल्लाह का फैसला हो उस पर राजी हो जाए। तो ये है अल्लाह का शुक्र अदा करना। जैसे अल्लाह के शुक्र के एहसास से जो है वो आंखों से आंसू निकल आए कि अल्लाह तेरी मुझ पर इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि मैं इनका शुक्र नहीं अदा कर सकती। अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो ये थी पहली नसीहत जो थी, जो यहाँ सामने लाई जा रही है कि अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र गुजार हो। फमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी फमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद। और जो कोई शुक्र करे तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है। फमन कफरा, और जो कुफर करे, फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद, तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आप से आप महमूद है। अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला जो है वो गनी है, बेनियाज है, किसी के शुक्र का मोहताज नहीं है। अगर कोई शुक्र करता है तो अल्लाह की खुदाई में इजाफा नहीं होता, अगर कोई कुफर करता है तो उससे भी अल्लाह की जो खुदाई है उसके अंदर कोई कमी नहीं हो जाती। तो अगर कोई शुक्र करता है तो उस शुक्र करने से उसका अपना ही फायदा है। और यहाँ पर जो है आप अपना जायजा लें, आप अपने बारे में गौर करें कि मैं क्या करती हूँ। और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो है ये बहुत डराती है कि आपने फरमाया कि मैं जब मेराज पर गया तो मैंने जहन्नुम में औरतों को ज्यादा देखा। तो उसकी जब वजह पूछी गई तो आपने कहा कि औरतों की नशुक्री की वजह से, औरतों की नशुक्री की वजह से। तो कदम कदम पर, लफ्ज लफ्ज पर, अमल अमल पर मुझे और आपको अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है उस पर कनात करनी है, क्योंकि दिल नहीं भरता, पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता। अलमारियां भर जाती हैं, अटैची भर जाते हैं, फ्रीजर और फ्रिज भर जाता है ना। बड़ा कुछ है अल्लाह का दिया मेरे और आपके पास, लेकिन क्या है कि दिल नहीं भरता। तो हमें जो है जो कुछ भी अल्लाह ने अता कर रखा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जब तक हम शुक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं हो सकता। और जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह नेमते और अता करता चला जाता है, अल्लाह और बढ़ाता चला जाता है। और अगर कोई शुक्र नहीं करता तो उसका अपना नुकसान है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात बेनियाज है और आपसे आप महमूद है। आपसे आप महमूद है इसके मानी है कि कोई अल्लाह ताला की हमदो सना करे या ना करे, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के कमाल जमाल पर गवाही दे रहा है। अल्लाह की मखलूक जो है वो अल्लाह की हमद बयान कर रही है। अब आयत नंबर 13 से जो है वो लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत शुरू होती है जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। तो यहाँ पर जो है आप भी ये सोचें कि ये वैसे तो पूरा कुरान ही इंशाल्लाह आपको अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ना है, सारी जिंदगी पढ़ना है इंशाल्लाह। लेकिन अमल का उसूल यहाँ पर ये है कि ये जो आयात हैं जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की हैं, तो इन आयात को बच्चों के साथ शेयर करना है। यानी आमतौर पे बस नाजरा कुरान पढ़ा देते हैं ना, लेकिन क्या करना है कि बच्चों को कुरान तर्जमे से पढ़ाना है, और खास तौर पर ये आयात अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर करनी है, क्योंकि ये वसीयतें लुकमानी है, बेटा हो या बेटी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला कहते हैं, वाइस काला लुकमानु लिबने ही, कि याद करो जब लुकमान अपने बेटे को क्या कर रहा था, वह हुआ या इजहू, कि वो उसको नसीहत कर रहा था। तो इब्न जो है इसका रूट है बा नून वाओ, तो ये बेटे के लिए इस्तेमाल होता है कि जब वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा था। और वैसे इब्न से मुराद सिर्फ बेटा ही नहीं बेटी भी है, औलाद सारी मुराद है। वह यजहु वो एनजोए इसका रूट है, और ऐसी नसीहत जिसे दिल नरम हो जाए। तो बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी नरमी से वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, या बुनैया ए मेरे बेटे। कुरान का मुझे ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे हकीम लुकमान जो है अपने बेटे को जब नसीहत करते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत मोहब्बत के साथ कर रहे हैं। मोहब्बत का जो है वो उमड़ता हुआ एक दरिया है, उबलता हुआ एक दरिया है, फवारे मारता फवारे हैं जैसे। या बुनैया ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्ला, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है लुकमान का अपने बेटे की नसीहत का जिक्र क्यों किया, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई चीज जो है वो प्यारी होती है तो अपनी औलाद होती है, और इंसान अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मुखलिस होता है। तो यहाँ पर इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि जो बेहतरीन बाप है उसने क्या किया, अपने औलाद को नसीहत की, और नसीहत में भी क्या बात की, ला तुशरिक बिल्ला, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। इन्न शिरका लजुल्मुल अजीम, हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो जुल्म होता है किसी का हक मारा जाए, शिर्क जो है उसको जुल्म अजीम कहा जाता है। यहाँ पे भी जुल्म अजीम कहा जा रहा है, क्यों, कि इंसान जो है दूसरी हस्तियों को, दूसरे माबूदों को खालिक राजिक हाकिम मुनम हकीकी के बराबर ला खड़ा करता है। ऐसी हस्तियां जिनका ना किसी चीज के पैदा करने में हिस्सा है और ना ही किसी को नेमतें देने में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंसान क्या करता है, दूसरों की बंदगी बजा लाता है और अल्लाह का हक बंदगी जो है वो मारता है। तो क्या करना चाहिए, एक अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। ला तुशरिक बिल्ला इन्न शिरका लजुल्मुल अजीम, और बेशक शिर्क जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो शिर्क क्या है, कि अपने खालिक की मर्जी के खिलाफ अमल किया जाए, अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, जमाने के रस्म और रवाज के आगे झुका जाए, खानदान के रस्म और रवाज, और फिर जो है वो दूसरों के सामने झोलियां फैलाना, गैरों के सामने सजदा करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये जो आयत नंबर 13 और 14 में लुकमान की नसीहतों के दरमियान जो अल्लाह की बात है, एक राय ये है कि ये लुकमान ही की बात है, एक राय ये है कि ये जो है ये अल्लाह की बात है, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को ये हुक्म दिया है। और दूसरी राय ये है कि लुकमान ने ही अपने बेटे को ये नसीहत की। फवसैनल इंसाना, और ये हकीकत है कि हमने इंसान को वसीयत की। तो राय क्या है कि ये आयत जो है ये अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से लुकमान की बात की वजाहत के तौर पर इरशाद फरमाई। फवसैनल इंसाना, हमने इंसान को नसीहत की, किस चीज की, वालिदैही, कि अपने वालदैन का वो हक पहचाने, और ये नसीहत अल्लाह ताला ने की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीस भी मिलती है, और इस हदीस की रोशनी में आप इस आयत को समझेंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्ने सुलूक का ज्यादा हकदार कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ, उम्मुक। साहबी ने कहा कि फिर कौन, तो आपने फिर फरमाया, उम्मुक, तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा फिर कौन, आपने कहा उम्मुक, तुम्हारी माँ। तीसरी दफा भी आपने कहा तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा फिर कौन, चौथी दफा, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा फिर कौन, तो आपने कहा कि तुम्हारी माँ। तो यानी आप देखें कि हमें हदीस से ये बात पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 दफा तो माँ का कहा, तीन दफा और चौथी दफा कहा कि तुम्हारा बाप। तो इससे क्या बात पता चलती है कि हक की खिदमत जो है वो माँ का बाप की निस्बत जो है वो ज्यादा है। और यहाँ पे इसकी वजाहत की जा रही है कि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालहु फी आमैनी। तो उसकी माँ ने क्या किया, हमलतहु उसको जो है वो उठाया, पेट में रखा, उम्मू उसकी माँ ने। वहन वहन जो है ये कमजोरी को कहते हैं, वो हा नून तकलीफ कमजोरी, वाहनन कमजोरी उठाकर, अल्लाह वाहन कमजोरी पर, जोफ पर जोफ उठाकर, तकलीफ पर तकलीफ उठाकर, वफिसालहू और उसका जो है वो दूध छुड़ाना, फासला होता है ना दूरी को कहते हैं, वह फिसाल हो उसका छुड़ाना दूध, ब्रैकेट में लिख लें फी आमैनी 2 सालों में। तो फिर उसको 2 साल इसका दूध छुड़ाने में लगे। पीछे भी आपने पढ़ा था ना हौलैनी कामिलैन कि दूध पिलाने की मुद्दत जो है वो 2 साल है। अनिश्कुरली वले वालिदैक इलैल मसीर, इसीलिए हमने उसको ये नसीहत की थी कि मेरा शुक्र कर और अपने वालदेन का शुक्र बजा ला, फिर मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। तो अब देखिए अगर आप इन आयात को समझें तो आपके सामने ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है कि यहाँ पर जो है वो माँ का हक बताया जा रहा है। और माँ क्या करती है, नंबर वन कि बच्चे को पेट में रखती है जब हामला होती है, नंबर दो अल्लाह ताला ने कहा कि वाहनन अला वाहन कमजोरी पर कमजोरी उठाकर, और कमजोरी पर कमजोरी उठाना जो माँ का है, आप भी जो है वो इन मरहलों से गुजरी हैं, जिनके पास औलाद है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि माएं जो हैं किस तरह से ये कमजोरी जो है वो उठाती हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान वो किन मराहल से गुजरती हैं। और आमतौर पे जो है वाहनन अला वाहन से क्या मुराद लिया जाता है, जैसे आप देखें कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है सुबह में जो कमजोरी होती है और दिल खराब होता है, सर दर्द होता है, फिर ये कि खाना नहीं खाया जाता, खा ले तो वॉमिटिंग होके वो निकल जाता है, 78% औरतों में नींद की कमी हो जाती है, कमर दर्द रहता है, फिर हार्ट बर्निंग रहती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, लेग्स में क्रैम्स पड़ते हैं, कब्ज हो जाती है, डिलीवरी के दौरान खून जाया होता है, तकलीफें से औरत गुजरती है, बाज औरतें मर भी जाती हैं। मेरी अपनी बड़ी बहन जो थी जब तीसरा बच्चा उनके यहाँ पैदा होना था और वो आखिरी टाइम था उनका, तो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। तो वाहनन अला वाहन, तो ये प्रेगनेंसी ऐसी चीज है और ऐसा वक्त है कि कुरान जो है इसका जिक्र कर रहा है, औरत की इस मुशक्कत का कुरान मोतरिफ है, एतराफ करता है। इसका मतलब क्या है कि वालदा के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए। फिर फरमाया अनिश्कुरली वले वालिदैक कि मेरा शुक्र भी अदा कर, वो वले वालिदैक और अपने वालदेन का। अब इसका ये नहीं मतलब कि बाप का नहीं करना, माँ का भी करना है और वालिद का भी करना है, क्योंकि वालिद जो है वो खून पसीना एक करता है, मेहनत मजदूरी करता है, जॉब करता है और अपनी औलाद के लिए अपनी बीवी के लिए जो है वो दिन रात एक करता है। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि दोनों के साथ हुस्ने सलूक करो, दोनों की बात मानो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की अतात करना, अल्लाह के रसूल की अतात करना, और इलैयल मसीर जो है इसमें अकीदा आखरत बयान किया गया है कि फिर मेरी ही तरफ तुझे पलट कर आना है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है तौहीद की दावत के साथ साथ फिर वालदेन के साथ हुस्ने सुलूक करना। अब वालदेन के साथ हुस्ने सुलूक की आयत नंबर 15 में हद बताई जा रही है। अब इसका ये नहीं मतलब कि अगर वालदेन शिर्क की दावत दें तो ये समझना है कि चूंकि वालदेन के बड़े हकूक हैं तो फिर जो है वो शिर्क करना शुरू कर देना, नहीं, यानी हुस्ने सुलूक तो करना है लेकिन उनकी वो बात नहीं माननी जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। वह इन जाहदा का, और अगर वो दोनों तुझको जो है वो मजबूर करें, जाहदा का अगर वो तुझ पर दबाव डालें, अगर वो दोनों कोशिश करें, असल में जहादान था, तो अगर वो दोनों कोशिश करें तुझ पर, यानी अगर औलाद को दोनों वालदैन मजबूर करें, दबाव डालें, किस चीज के लिए? अला अन तुशरिका, कि तू शिर्क करे, बी मा लैसा लका बिही इल्म, मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक ठहराए जिसे तू नहीं जानता, मा लैसा लका, नहीं है तेरे पास बिही इसका इल्म, कोई इल्म, यानी तुझे, तू नहीं जानता, तेरे इल्म में नहीं है कि इसको भी खुदाई में शामिल करना है, और अल्लाह ने तालीम भी नहीं दी। फला तो ते हुमा, तो इन दोनों का कहना ना मानना, वसाहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, मगर दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करते रहना, मारूफ अच्छा बर्ताव, वत्तबे सबील मन अनाबा इलेही, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की करना जिसने मेरी तरफ रुजू किया है, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है, औलाद को भी और वालदेन को भी, फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम दुनिया में कैसे अमल करते रहे। तो आप देख लीजिए कि आयत नंबर जो 15 है, इसमें वालदेन की जो अतात है, इसकी बाउंड्रीज बताई गई हैं कि अगर वो शिर्क करने को कहते हैं, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम कहते हैं, फिर उनका कहना नहीं मानना। तो एक बात तो ये कही गई। दूसरी बात जो पता चलती है वो ये है कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अगर वालदेन भी उसका हुक्म दे तो उनका कहना नहीं मानना, लेकिन वालदेन के साथ दुनिया की जिंदगी में जो है वो खिदमत का, हुस्ने सलूक का रवैया जो है वो इख्तियार करना है। तो आप देखें कि वसीयत लुकमानी जो है इसमें क्या चीजें पता चलती हैं। पहली चीज तौहीद की है, और फिर इसके साथ ही, यानी तौहीद क्या है, ये अकीदे की इस्लाह है ना, कि अकीदा ठीक होना चाहिए। और साथ ही ये बात भी पता चलती है कि जैसे अगर मुशरिक वालदेन भी है ना, यानी वो शिर्क के लिए कह रहे हैं, मुशरिक वालदेन है, तो भी उनकी मुशरिकाना बात को तो नहीं मानना, लेकिन उनके साथ जो है वो हुस्ने सलूक करना है। और ये जो आयत है, आयत नंबर 15, इसके बारे में ये भी आता है कि ये जैसे हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु की वालदा थी, जो उनसे कहती थी कि तू शिर्क कर, और फिर उन्होंने इनकार किया था, तो फिर वो कहती थी कि तेरे रब ने तो खुद ही कहा है कि वालदैन का कहना मान, तो तू फिर मेरा कहना क्यों नहीं मानता ना, तेरे तो कुरान में लिखा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वालदैन की मुशरिकाना बातें नहीं माननी, लेकिन उनके साथ वैसे हुस्ने सलूक करना है, और पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर, मुराद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरी तरफ रुजू किया, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी हमारे लिए रोल मॉडल है। अनाबा नौब से है, लौटना पलटना, शहद की मक्खी को भी नून वा नौब कहते हैं, कि वो बार बार अपने छत्ते की तरफ जाती है, रास्ता नहीं भूलती, कितने मीलों का सफर करके वो दूर चली जाए, लेकिन वो अपने छत्ते की तरफ लौट कर आती है। तो कहा कि तुम रसूल की अतात करो, फिर तुम सबको पलटना मेरी तरफ है, उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम दुनिया में कैसे अमल करते रहे। तो वालदैन का अमल भी और फिर औलाद का अमल भी, उस वक्त अल्लाह ताला जो है वो उसको खोलकर सामने रख देंगे। फिर आप देखिए कि आयत नंबर ये जो 16 है, इसमें अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और इल्म और कुदरत का जिक्र किया गया है, कि अल्लाह का जो इल्म है वो हर चीज पर मुहीत है। तो अल्लाह ताला के इल्म का जिक्र करके दरअसल खौफे खुदा पैदा किया जा रहा है। खौफे खुदा फरमाया, या बुनैया, लुकमान ने कहा था। अब यहाँ पे इखलाक के मुतल्लिक जो है वो नसीहत की जा रही है, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नहा इन तकू मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाती औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ताला के अलीम और खबीर होने का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, और तीन मिसालें दी हैं कि अल्लाह ताला ने कहा था, लुकमान अलैहिस्सलाम जो है वो कह रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने जो फरमाया आयत नंबर 16 में, कि लुकमान ने कहा था, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नहा, के बेशक वो, मुराद क्या है, कि बेशक वो चीज इन तकु अगर वो हो, मिसकाला सा काफ लाम बराबर, मिन खरदलिन खरदल के। खरदल किसे कहते हैं? खा रा दाल और लाम। इसका जो रूट है ये रुबाई है, और ये कहते हैं जर्रा बराबर, राई बराबर जो चीज होती है उसके लिए इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ही हकीर और बहुत ही छोटी चीज को आप राई का इस्तेमाल करती है ना, और आप देखें कि कितनी मामूली सी ये चीज होती है कि नजर भी नहीं आती ना, ये बहुत ही हकीर, बहुत ही छोटी, उसका कोई वजन नहीं होता। नजर तो आती है जैसे राई, लेकिन उसका कोई वजन नहीं होता। तो खरदल राई को कहते हैं, राई के बराबर। तो पहली मिसाल ये दी कि इन तकू मिसकाला हब्बतिन मिन खरदल, कि अगर कोई चीज जो है वो हो बराबर, हब्बतिन दाना, मिन खरदल राई के बराबर, कि कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो। तो अब इतनी मामूली सी राई के दाने के बराबर है, मतलब क्या है कि मिसाल दी गई है कि कोई चीज इतनी छोटी है कि जिसका वजन महसूस होता है ना तोल में ना तराजू में, पलड़े को वो झुका सकती है। नंबर दो, ऑफिस समावाती, या वो आसमानों में हो। उससे पहले कहा बल्कि नंबर दो, फतकुन फी सखरतिन, या वो किसी चट्टान में हो, या वो किसी चट्टान में हो। और इसके मानी है जैसे चट्टान आबादी से दूर होती है ना, जंगल पहाड़ों में, तो ऐसी जगह पे, महफूज जगह पे वो राई के बराबर चीज हो। स्वाद खारा, ये पहाड़ को कहते हैं, बहुत बड़े बुलंद पत्थर को कहते हैं और पहाड़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो या वो जो राई के दाने के बराबर चीज है वो किसी पहाड़ के अंदर हो। अब आप देखें कि दूर पहाड़ में उसकी कहाँ पता चलता है। नंबर तीन, औफिस समावाती औफिल अर्दी, या आसमानों में हो या जमीन में कहीं छुपी हुई हो। अब आप देखें कि आसमान में है, जमीन में है, याति बिहल्लाह, अल्लाह उसको निकाल लाएगा, क्योंकि अल्लाह अंधेरी रात में चलने वाली चींटी की हरकत और सकनात से भी बखबर है। अल्लाह बड़ा लतीफ बारीक भी है, इसका इल्म मख्फी तरीन चीजों पर मुहित है। इन्ना अल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला जो है वो बारीक भी है और बाखबर है। तो यहाँ पर दरअसल जो है इंसानों को ये नसीहत की जा रही है कि जाहिर और बातिल में अल्लाह से डरना, क्योंकि इस्लाम का ये बुनियादी अकीदा है, अकीदा तौहीद। और इस बात का ख्याल रखना कि अल्लाह के इल्म और नजर से कोई चीज छुप नहीं सकती। जैसे होता है ना कि इंसान सोचता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, और लेकिन अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत को हर चीज का पता है। तो क्या करना चाहिए कि अकेले हैं, खलवत में हैं, कमरे के अंदर हैं, किसी को नहीं पता, कहीं भी हैं, तो याद रखें कि अल्लाह ताला सारे अमाल को देखने वाला है, और अल्लाह ताला फिर पूछेगा भी। तो जब कोई राई के दाने के बराबर भी कोई चीज है, अच्छी अच्छा अमल है या बुरा, मुराद क्या है राई के दाने के बराबर कोई चीज है यानी अमल, छोटा है, अच्छा है या बुरा, आसमानों में, जमीन में, चट्टान के अंदर, अल्लाह कयामत के दिन उसको जाहिर करेगा, इसका हिसाब लेगा, उसके मुताबिक जजा और सजा देगा। तो कोई चीज अल्लाह से जब पोशीदा नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, वो बारीक भी और बाखबर है। फिर आयत नंबर 17 देखें तो यहाँ पे इस्लाह अमल की दावत है, यहाँ पे जो है वो इबादात का जिक्र है। या बुनैया अकीमिस सलाता, ए मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज दीन का सुतून है। तो उन्होंने जो है वो इस्लाह अमल की दावत दी है कि नमाज कायम कर। नंबर दो, वामुर बिल मारूफी, और नेकी का हुक्म दे। नंबर तीन, वनहा अनिल मुनकरी, और बदी से मना कर। नंबर चार, वस्बिर अला मा असाबक, और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सबर कर। तो ये जो नेकी का हुक्म देना है, बदी से मना करना है, ये बगैर सबर के नहीं हो सकता, और नमाज भी बगैर सबर के नहीं हो सकती। तो बात इस्लाह अमल की हो, नेकी का हुक्म देने की हो, बदी से मना करने की हो, तो असल बात क्या है कि बगैर सबर के ये काम नहीं हो सकता। तो जो भी अकायद हैं, इबादात हैं, या सोसाइटी की इस्लाह है, अपनी इस्लाह है या सोसाइटी की, ये उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता काम जब तक कि इंसान जो है वो सब्र ना करे। वस्बिर अला मा असाबक, और इस पर सब्र कर जो मुसीबत भी तुझ पर जो है वो पहुंच जाए। तो इससे ये बात पता चलती है कि जब भी आप इस्लाह खल्क का काम करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बदी से मना करेंगे, तो लोगों की तरफ से आप पर तानो तानो तशनी होगी और दुश्मनी मिलेगी, मुखालफत होगी। तो अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि अपनी इस्लाह और आम लोगों की इस्लाह के लिए जरूरी है कि उस वक्त जो है वो सब्र किया जाए। तो नेकी की दावत देनी है, बुरे काम से रोकना है, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, बड़े ही जो है ये सब्रो सबात के काम है। और आखिरी जो दो आयते हैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्ने इखलाक की तलकीन की है, और ये तलकीन को करने वाले कौन है यहाँ पर, यहाँ पे लुकमान का जिक्र किया जा रहा है। तो लुकमान ने फिर अपने बेटे से कहा था आयत नंबर 18, वला तुसाइर, वला तुसाइर, और तू जो है वो ना फुला। स्वाद आइन रा जो है ये रूट है इसका, अरबी जबान में एक बीमारी को कहते हैं जो ऊंट की गर्दन में होती है, और इसकी वजह से ऊंट अपना मुंह जो है वो एक तरफ फेर कर रखता है, यानी ऊंट के सर या गर्दन में जब बीमारी होती है सार, उसकी गर्दन मुड़ जाती है। इसी से फिर मुहावरा बन गया कि फलां शख्स ने ऊंट की तरह अपना तकब्बुर से मुंह फेर लिया, अपनी गर्दन को मोड़ लिया, यानी तकब्बुर से पेश आया और मुंह फेर कर बात की। ये है वला तो सर, और मुंह फेर कर बात न कर। खद्दा का खा दाल दाल रुखसार को कहते हैं, ये जो गाल है ना इसको कहते हैं, और तू ना फेर कर बात कर खद्दा का अपने गाल, लिन्नासी लोगों से। तो यहाँ पे आदाबे मुआशरत बताए जा रहे हैं। बाज लोग बात करते हैं ना, रुख किसी तरफ होता है और बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा कोई आपसे बात कर रहा तो उसकी तरफ अपने रुख को करें, उसको देखें, उसकी बात को सुने, उसको तवज्जो दें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, बड़ा या छोटा आपसे बात करता आप उसको पूरी तवज्जो देते, और जैसे कि वो कोई बड़ी चीज है ना। तो ये है असल बात कि लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ये क्या है, ये इखलाक का अदब बताया जा रहा है कि लोगों की तरफ रोक करके और नरमी से मोहब्बत से बात करनी चाहिए। नंबर दो, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, ना जमीन में अकड़ कर चल। मीम राहा जो है इसके मानी है ऐसी अकड़ जो कि मुतकब्बिर की होती है, इतरा कर चलना, अकड़ कर चलना, बहुत ही खुशी की शिद्दत में इंसान इतराने लगे, अपने आप को बड़ा समझने लगे। तो अब आप देखें कि पहले बात का जिक्र था कि बात कैसे करनी है, अब जो है वो जिक्र है कि चलना कैसे है। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और ना जमीन में अकड़ कर चल। सुभान अल्लाह, ये गुफ्तार भी और चाल भी दोनों में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता कुल्ला मुख्तालिन। मुख्ताल जो है इसका इसके मानी होते हैं, इसका रूट है खा तालाम, शेखी बिगाड़ना और शेखी बिगाड़ने वाला। इससे मुराद क्या है मुख्ताल से, इसके मानी है कि अपने आप को बड़ा समझने वाला और फखर करने वाला, और ये वो किरदार है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, सख्त नापसंद है, और इससे जो है वो मना किया जा रहा है। बल्कि ये जो मुख्ताल है इसका रूट है खा या लाम, खैल से है खा या लाम, ये पहले भी मैंने पढ़ाया था, जैसे ख्याल और घोड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है, घुड़सवार के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके असल में मानी क्या होते हैं कि इंसान जो है जैसे ख्यालों ही ख्यालों में होता है ना, और जैसे ख्यालों में उड़ रहा होता है तसव्वुर में, तो मुख्ताल का रूट है खा या लाम, वो हरकत जो हर आन नया रंग दे, तसव्वुर करना। तो ऐसे शख्स का दिमाग आम आदमियों से ऊंची सतह पर होता है, ये मरहा से अगला दर्जा है। नीमरा हा, ये भी इतराने का दर्जा है, नाजो अदा से अकड़ कर चलना। और दूसरा दर्जा है मुख्ताल, जिसका रूट है खा या लाम। और फिर है फखूर, फखूर तीसरा दर्जा है, इंसान अपने हसब नसब पर इतराए, शेखी बिगारे। अब हसब नसब पर इतराना तो उसमें उसका अपना तो कोई क्रेडिट नहीं है ना, कोई दौलत पर इतराए, ये तो अल्लाह की दी हुई चीजें है ना। तो फखूर, तो फखूर होता है कि अपनी बड़ाई का दूसरों पर इजहार करना। तो तकब्बुर की हवा जब इंसान के दिमाग में भरती है तो ये किरदार बन जाता है। तो मराहा पहला दर्जा है, दूसरा मुख्ताल है और तीसरा फखूर है। और ये तीनों से अल्लाह ताला ने यहाँ पे मना किया है, किसमें? अपनी चाल के अंदर, अपनी गुफ्तार के अंदर। तो फिर करना क्या है? ये अपने अंदर आजी और इनकसारी पैदा करनी है। और आखिरी आयत है वक्सिद फी मशिये का, वक्सिद काफ स्वाद दाल इसका रूट है, और इतदाल इख्तियार कर, म्याना रवि इख्तियार कर, फी मशी का अपनी अपनी चाल में। मीम शीन या चाल को कहते हैं, मशा चलने को भी कहते हैं। वग्दुद, गैन द्वाद द्वाद, गज़े बसर, आप पीछे पढ़ चुकी हैं सूरत नूर में, नजर को नीचा करना, आवाज को पस्त करना, नीचा करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वग्दुद और नीचा कर, पस्त रख, मिन सौतिक अपनी आवाज को, इन्ना अनकरल अस्वाती ला सौतुल हमीर, सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। सौत वाहिद है, अस्वात जमा है, आवाज को कहते हैं, और हमीर हिमार गधे को कहते हैं, और उसी से जो है वो हमीर है। तो यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि सब आवाजों से बुरी आवाज जो है वो गधों की आवाज होती है, तो आवाज को नीचा रखा जाए। तो चीख चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ऊंची आवाज से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पसंदीदा नहीं है। और गधे की आवाज सबसे जो है वो बुरी आवाज बताई जा रही है। और हदीस में आता है कि गधे की आवाज से बचो कि शैतान, गधे की आवाज सुनो तो शैतान से पनाह मांगो, बुखारी की रवायत है। क्योंकि गधा जो है वो शैतान को जब देखता है तो बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कहा गया जाता, हमें हदीस में दुआ भी मिलती है कि औजु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए। तो ये है जो यहाँ पे तालीम दी जा रही है। अब आप देखें कि आयत नंबर 18 में और 19 में हुस्ने मुआशरत, आदाबे मुआशरत बताए जा रहे हैं, जिसमें बात करने का तरीका, चलने का अंदाज, चाल के अंदर म्याना रवि, आवाज को नीचे रखना, और सब आवाजों से बुरी आवाज जो है वो गधे की आवाज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल कैसी थी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो म्याना रवि से चलते थे, और ऐसे चलते थे जैसे कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ जो है वो आ रहा हो, और कदम जो थे वो जमा जमा कर रखते थे। तो पहली बात जो हमें पता चल रही है कि लोगों से गुफ्तगू और मुलाकात में मुतकब्बिराना अंदाज से रुख फेरने से मना किया। दूसरी बात, जमीन पर इतरा कर चलने से। तीसरी बात, दरमियानी चाल चलने की हदायत। और चौथी बात, जोर से ऊंचा बोलने से मना किया गया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? आप हमेशा खुश व खुर्रम मालूम होते, मुस्कुराते हुए, आपके इखलाक में नरमी और बर्ताव में सहूलत पसंदी थी, और आप शोर नहीं मचाने वाले थे, आप ऐब नहीं लगाते थे, आप बुखल नहीं करते थे, और ना तो बहुत ही मरे हुए लोगों की तरह चलना चाहिए, और ना ही बहुत ही अकड़ कर और आराम से जो है वो चलना चाहिए। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि उमर बिन खताब के बारे में कि जब वो चलते तो तेज चलते थे, और जब वो कलाम करते तो इस तरह के लोग अच्छी तरह जो है वो सुन लें। और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सहाबाए कराम को यहूद की तरह दौड़ने से मना किया जाता था, और नसारा की तरह बहुत आहिस्ता चलने से भी, और हुक्म ये था कि इन दोनों के दरमियान म्याना रवि जो है वो इख्तियार की जाए। ये है जो कि अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बाअमल बनाए। और ये जो हजरत लुकमान की नसीहत है, इससे अमल के लिए क्या उसूल निकलता है कि ये जो आयात है इनको हम अपने बच्चों के साथ खास तौर पर डिस्कस करें। नंबर दो, हम सोचें कि वो क्या आदतें हैं या क्या चीजें हैं जो हम तकब्बुर पैदा करती हैं। और नंबर तीन जो है, अपने ऊपर अल्लाह के तकवे के पहरे बिठाएं कि मुझे अल्लाह से डरना है। अगर अल्लाह का डर पैदा होगा तो डबल फेस किरदार इंसान का खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुनाफिक लोगों से डरता है, हर वक्त ये देखता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो मोमिन होता है वो सिर्फ अल्लाह का खौफ जो है वो अपने अंदर पैदा करता है। और फिर जो है ये भी देखना है कि मुझे जो है वो शुक्र गुजार बंदी बनना है अपने वालदेन की, अपने शोहर की, और बंदों का शुक्र अदा करना है। यानी उनका शुक्र अदा करने से मुराद कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। तो अगर कोई हुस्ने सलूक कर रहा है, नेकी कर रहा है, तो उसको थैंक यू कहना, उसका एहसान मंद होना, उसके लिए दुआए खैर करना। बाज़ुकात आपको कोई तोहफा तहाइफ देता है, आप नहीं दे सकते, तो आप क्या करें, कम अज कम उसके लिए दुआए खैर करते रहें। जब उसका ख्याल आए उसके लिए दुआ मांगे, और फिर अल्लाह के लिए शुक्रगुजार बनना। और आप देखेंगे बाज़ुकात आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो कसरत से कहती हैं, लेकिन शुक्री बहुत करती हैं। कभी वालदेन की, कहाँ शादी कर दी, कैसा शौहर पल्ले पड़ गया, बच्चे कैसे हैं, मेरा कद छोटा है, रंग कैसा है, नाक कैसी है, मेरी नसीबों में जो है वो अच्छे दिन नहीं है। तो दुनिया का भी और अल्लाह का भी। और आप देखें कि सुबह से लेकर रात तक एक दिन के अंदर कितने ऐसे जुमले हैं जो अल्लाह ताला की ने शुक्री के मेरी जबान से निकलते हैं। तो क्या करना है कि दौलत, इकतदार, हुस्न, इल्म, ताकत, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिए हैं, इस पे अल्लाह की शुक्र गुजारी अदा करनी है। तकब्बुर नहीं पैदा करना अपने अंदर, क्योंकि तकबर जो है ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने एक साहिब को देखा कि बड़े कमजोर से बने चल रहे हैं, पूछा इन्हें क्या हो गया, अर्ज किया गया ये तो कुर्रा में से हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, तालीम और इबादत में मशगूल रहने वाले। इस पर आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, उमर सैयदुल कुर्रा थे, मगर उनका हाल ये था कि जब चलते तो जोर से चलते, जब बोलते तो कुव्वत के साथ बोलते, और जब पीटते तो खूब पीटते। तो असल दीनदारी क्या है कि मियाना रवि जो है वो इख्तियार की जाए। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने एक शख्स को सर झुकाए हुए चलते देखा तो पूछा, सर उठाकर चल, इस्लाम मरीज नहीं है। इसी तरह एक शख्स को हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने देखा मरियल चाल चलते हुए, कहा जालिम हमारे दीन को क्यों मारे डालता है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अपने अंदर जो है ना तो अकड़ होनी चाहिए, ना मरियलपन, ना रियाकाराना चाल होनी चाहिए, ना जाहिरी जोहद और इनकसारी का रवैया। तो क्या करना है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सुराही सर निगुं होकर भरा करती है पैमाने। और अल्लाह ताला हम सबको अपने वालदेन के साथ हुस्ने सलूक करने वाला बनाए, और जो वालदेन जिनके दुनिया से चले गए हैं हम उनके लिए जरूर दुआ मांगे, रब्बिर हमहुमा कमा रुबयानी सगीरा, रब्बिज अन्नी मुकीम अस्सलाती व मिन जुर्रियती, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना अग्फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। और अपने बच्चों के नमाजों की फिक्र, इस्लाह अमल की फिक्र, और मसलसल दुआ करते रहना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दिन बदलेगा, दिन बदलेगा, दिल बदलेगा, हालात बदलेगा। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े ही हौसले के कामों में इसमें से है, और कभी मायूस नहीं होना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको बाअमल बनाए। और ये बड़ी ही खूबसूरत आयात हैं जो अभी मेरे और आपके सामने आई हैं, और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए और इन आयात के मुताबिक हमारी जिंदगी जो है वो गुजरने लगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।